पूज्य कहते हैं मुनिवरों, सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी वैसी सुनी उसी रूप में मैं पाप नाशक करता तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहाँ 100 करोड़ों तक बड़ा भयानक अवसर हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगर होता। उस समय मुनि पशु और मनुष्य पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को और चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। परोपकार सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा, मां मुनि, कभी शीर्ण न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए गए दान होम तथा देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उस महर्षि ने प्रशिक्षित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्य के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा में महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा में शूद्रता। उत्तम पुरुष का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे स्वीकार कर लेते हैं किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान, शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य 4 खंभे हैं जिनके आधार ये पृथ्वी पर टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहाँ इस दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करके उस मुनिवर वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निविर बोआ दिए। तरह तरह के धाय और धन्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। और यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे सहस्त्र ऋषि मुनि पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव आकर रहने लगे। इस वन भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। इस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। यह वन अनेक शुभ कारण के लिए ऋषि अपने शिष्य भार्य पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने काल्पेश अपने करने के वहाँ धन बोया है और गौतम बुद्ध के प्रभाव से उस वन में और आनंद छा गया। एक बार वह गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग का लेकर अल्लाह पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और उन लोगों के गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्ति पराधीन गणेश जी से प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय दीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटका कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, ऋषि, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने पर तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो और उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता, और जब उपकिरण को दुख दिया जाता है तो वह जगत में अपना नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शंभु फल का त्याग करके अहिहारक और फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी के जो कहा कि असाधु सभी साधुता को, साधु अभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह निश्चय बात ठीक जान पड़ती है। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्नि देव और पितर अपमारे किसी भी हव्य काव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौहत्तारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अनंतर हो चले जाओ, विलंब ना करो। सूची कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और इन सबकी आज्ञा से दूर एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान तुम्हें अधिकार नहीं कर पाएगा। मुनिवर गौतम उसके कथनानुसार किसी भी तरह एक पक्ष बिताकर उस सुख दुख से दुखी हो बारम्बार उस मुनि से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके दीन भाव प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी से 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा गंगा जी में स्नान करके शुद्ध हो जाओ। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पार्वती की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का भी निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर यह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन ध्यानों का सेवा करने लगे।